ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
हाँ बताइए। भगवान के ऊपर फोकस ज्यादा करेंगे तो ऐसा लग रहा है कहीं तो मेरा मटेरियल लाइफ या मेरा मटेरियल जो गोल्स है वो पीछे छूट रहे हैं, तो इस कारण थोड़ा ना घर का ना घाट का हालत होगी। किस पर ज्यादा फोकस करें?
तो वीरा के बाद नहीं, एक्चुअली इसके अंदर वीरा के बाद बहुत दूर है, इसलिए स्पिरिचुअल डिस्कशन में भी ना कभी भी काल्पनिक चीज़ों पर डिस्कशन नहीं करना चाहिए जो वास्तव में नहीं है। ऐसे इफ एंड बट, अगर वो ऐसा होता तो फिर कैसे करेंगे, अगर मैं विरह में जाऊंगा तो फिर उसका मैं सेवा कैसे करूंगा, वो हम तब करना चाहिए जब हम विरह में जाएंगे, फिर वो प्रश्न आएगा तभी करना चाहिए। आज की तारीख में ये आपका सही प्रश्न है कि दुविधा है मन में कैसे करें, ये यहाँ गए तो वो ठीक नहीं होता है, वो करेंगे तो ये ठीक नहीं होता है। तो ये एक टिपिकल साधक की अवस्था है। टिपिकल साधक होता ना, जैसे हम लोग सब लोग साधक है, कोशिश कर रहे हैं भगवान का भजन करने का, तो साधक की अवस्था क्या होती है कि वो थोड़ा ज़्यादा भक्ति करेंगे तो उसका कर्तव्य से मन हट जाता है, और कर्तव्य में लग गए तो फिर वो भक्ति में मन हट जाता है। तो हमेशा वो होता है ना पेंडुलम, लंबक, या तो इस तरफ है या इस तरफ है, बीच में कभी सेंटर में आता नहीं, वो दोनों तरफ जाता है, या तो इधर जाता है उधर जाता है। कभी इतना भाव में आ जाता है कि ये लगता है अभी काम ही नहीं करने का, आज छुट्टी ले रहा हूँ, जप ही करने का दिल कर रहे हैं। कभी जप ही करने का दिल नहीं करता है, लगता है काम ही करते रहूँ, घर का ही काम करते रहूँ। ये यूजुअल स्थिति है। ये ना सबके बीच में स्पिरिचुअल लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट एक चीज़ होती है, उसका नाम है ओबीडियंस, आज्ञा पालन करना। वो ये दोनों स्थिति में चलते रहना चाहिए। ओबीडियंस जो है ना वो एक कॉमन लाइन है अपने स्पिरिचुअल लाइफ में, कि चाहे कुछ भी हो, चाहे भगवान के नाम में रस आ रहा हो, चाहे प्रेम से हृदय भरा हो, या बिल्कुल रुचि नहीं है, आज एक भी माला करने की इच्छा नहीं हो रही है, कुछ भी पढ़ने की इच्छा सुनने की इच्छा नहीं हो रही है, लगता है सेंस ग्रेटिफिकेशन कर लूँ आज पूरा अच्छी तरह से, खाना पीना रहना, दोनों अवस्था में मन को इतना पता होना चाहिए कि आज्ञा पालन करते रहना है। जैसे एक माता है जो प्रेग्नेंट है फर्स्ट टाइम, कितना आनंद हो रहा है अभी बच्चे की माँ बनूंगी मैं, और क्या क्या सोच रही है, क्योंकि प्रेगनेंसी के अंदर ज़्यादा कुछ काम नहीं होता है, खाओ पियो मस्त में, अच्छी तरह सो जाओ, वॉकिंग करो। लेकिन जैसे ही डिलीवरी होती है ना, उसी क्षण से 24/7 उसका एंगेजमेंट शुरू हो जाता है, ना नींद मिलती है, ना खाने को मिलता है, ना जप्पा पूरा होता है, ना बच्चे का कुछ कर पाते हैं, ऐसा दिमाग है ना कम्प्लीटली ऐसा फ्रस्ट्रेट हो जाता है दिमाग कम्प्लीट, कि अभी कल तो मैं एकदम आराम से थी नींद मींद पूरा करके, अभी आज से तो 7 दिन हो गए बच्चा हो गए, 3-4 घंटा भी सोई नहीं हूं मैं, जब तो कितनी माला माला लिया, छोड़ा छोड़ा लिया, पता नहीं क्या हो रहा है, कितनी माला बाकी रह गई, ऐसे एकदम अचानक स्थिति आ जाती है ऐसी। तो ये एक तरह से नोन स्थिति है, लेकिन एक तरह से अननोन भी है, क्योंकि पता नहीं था एग्जैक्टली क्या होता है उसमें। उसी तरह से भक्ति की स्थिति होती है कि कभी अपने कर्तव्य में, परिवार में, और या इंद्रिय भोग में इतना मन लगता है कि मतलब झप ही नहीं हो रहा है बिल्कुल, और कभी कभी ऐसा एकदम अचानक विरक्ति आ जाती है कि कुछ ये सब झूठ है, पत्नी बच्चे परिवार पैसा सब झूठ है, इसमें क्या है, भगवान का ही भजन करना चाहिए। दोनों ही एक्चुअली माया है, दोनों तरफ से माया ही है। वो दोनों का माया की स्थिति का ही प्रदर्शन है, ज्यादा इसमें घुस जाना या ज्यादा उसमें घुस जाना, क्योंकि दोनों टेम्पररी है, उसमें बहुत स्ट्रांग मजबूत बुनियाद नहीं है उसके अंदर। अगर आपको लग भी रहा ना कि ये सब माया है, पत्नी पति परिवार सब, लेकिन अगले समय आप तुरंत उसमें फंस जाओगे, रात को तुरंत उसी दिन तुरंत भोग में लग जाओगे आप। इसका मतलब मन जो है ना, मन जो केवल अपनी ही करना चाहता है, उस मन का ये लक्षण है। मन ही आपको बहका रहा है, आज ये करो कल ये करो, आज इसमें टेस्ट आ रहा है कल उसमें टेस्ट आ रहा है, मन ही आपको यहां से वहां ले जा रहा है, इधर से कोने से उधर कोने तक। तो उस समय जो शिष्य बन गया, किसी का शासन किसी का स्वीकार कर लिया है, उसको मिनिमम जो बेसिक नियम है ना उसको करते ही रहना चाहिए। जैसे आपको 9 बजे उठकर तैयार हो गए, 10 बजे काम पे जाना है तो जाना ही है आपको, और अपना काम करना है। सुबह उठ के जब करना है तो आपको करना है, मन लगे नहीं लगे आपको करना है। ट्रेनिंग की आवश्यकता है, कि दुविधा अवस्था ना हमेशा मनुष्य के जीवन में चलती रहती है, क्या करूं, ये करूं कि वो करूं। कभी कभी दो स्पिरिचुअल सेवा में भी कौन सी करूं, अभी सुनूं कि जब करूं, अभी जब तो हो गया लेकिन और सुनूं कि और जब पढ़ूं कि और कुछ सके मंदिर में सेवा करूं, ये दुविधा चलती रहती है। इसलिए जो बताया गया है ना उसके अंदर ओबीडियंस आज्ञा पालन करना बहुत आवश्यक है, और धीरे धीरे फिर मन को ना ये आदत लगाना जरूरी है कि कुछ भी हो जाए, कितना भी दुख हो जाए या कितना भी सुख मिले, बेसिक हमारा जो आज्ञा है उसको पालन करना ही करना है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अभी देखो मेरे भाई के घर में उसके बच्चे का डेथ हो गया, तो इतना हम लोग उसमें टेंशन थे, लेकिन फिर भी उसमें झोला माला करना है मुझे, वो उसका एक्सूद लेके मैं तो कर ही नहीं पाया, ऐसे थोड़ी करना है। इस तरह से कभी कभी कुछ चीजें अनपेक्षित होती है, अनपेक्षित अचानक हमला होता है अपने पर किसी चीज का, दुख का या सुख का या किसी घटना का, तो समझ आता है उसके अंदर, लेकिन फिर भी जो जो नियम अपना बेसिक है वो पूरा करना ही है, उसी से हमको आगे बढ़ना है। कि कुछ भी हो जाए, अभी भगवान को क्या शिक्षा दे रहे हैं कि संकट में भी आपको करना है, और किसी की शादी हो रही है बहुत खुशी हो रही है बच्चा पैदा हो रहा है तो भी आपको करना है, सुख में या दुख में, सुखे दुखे भूले ना को वदने हरि नाम करो रे। सुख भी आपका टाइम ले सकता है बहुत, कि शादी है घर में, आपके एंगेजमेंट है, कुछ क्या फंक्शन है कुछ घर में, आज फेस्टिवल है तो वो बहुत आनंद हो रहा है तो उसमें भी हम जप नहीं करते हैं। वो कोई मर गया अचानक अनपेक्षित रीति से तो भी दुखी होकर हम नहीं कर सकते, या तो बहुत सारा आई कैंप है तो दिन रात काम कर रहे, इतना सेवा है कि जप ही नहीं कर सकते। तो ये सारी स्थिति ना हमेशा आती रहती है, इसमें कोई सरप्राइज नहीं है, आगे भी आएगी। भक्ति में दृढ़ भी हो जाएंगे ना तो भी ये स्थिति आएगी, लेकिन जो ट्रेनिंग हमने लिया है कि किसी भी कीमत पर वो बेसिक ए बी सी डी जो अपना है ना रोज करना है, उसको करना ही है, उसको छोड़ना नहीं है। और कैसा ना चेंज, चेंज है ना चेंज, ये लाइफ में एकदम स्टेडी है, एक चीज बदलती नहीं है, क्या चेंज, एक चीज बदलती नहीं है क्या बदलाव, बदलाव बदलता नहीं, बदलाव आते रहते हैं। जैसे जन्म होने के पहले हम अंदर रहते हैं, सांस भी लेते नहीं हैं, डाइजेस्ट भी नहीं करते, कुछ भी एक्टिव नहीं, खाली रेडीमेड ब्लड आता है और रेडीमेड अपने बॉडी को चलाता है। लेकिन फर्स्ट चेंज क्या है, एक तो वहाँ से बाहर फेंका जाना, एकदम छोटे पैसेज में से बाहर जाना तड़पते हुए, बाहर आते ही सांस लेना है अभी आपको, अभी सप्लाई बंद हो जाएगा वो जो एक दिन से रेडीमेड आ रहा था बंद, अभी आपको खुद मेहनत करनी है, वो एक चेंज हो गया। वो सेटल होते होते अब भूख लग रही है, अभी अपने आप ब्लड नहीं आने वाला है, मुझे को सब करना पड़ेगा अपने आप मेहनत करके, मेहनत है बच्चे को बहुत उसमें, अभी आप उसको देंगे नहीं ना माँ का स्तन देंगे नहीं ना तो फिर वो मेहनत नहीं करता है, उसको रेडीमेड चमचे से चाहिए, वापस मेहनत कराना पड़ता है उसको, तो वो एक चेंज है उसके लिए। फिर उसके बाद में 6 महीना तक तो दूध ही पीते रहेगा, बाद में फिर वो और एक चेंज है कि उसको अभी अनाज खाना है, फिर कभी कभी पेट में दुखता है वो इंटेस्टाइन, इज अ कंडीशन कॉल्ड इंटेस्टिनल इंट्रोसेप्शन, ऐसी कंडीशन होती है आते चढ़ जाती है किसी को उसके वजह से, तो वो एक चेंज है। फिर अंदर गर्मी मौसम में रहता है वो 37 में रहता है, बाहर आते ही 20, 21, 22, 23, 24 अंदर से कम ठंड लगती है उसको, सब कुछ दिखता है बाहर, एकदम आगे अंधेरा था, थोड़ा सा लाइट सब जगह पर है, सूर्य पब्लिक का ट्यूबलाइट सब दिख रहा है, इसलिए उसको अंधेरे में रखते हैं 40 डेज तक, धीरे धीरे उसको आदत लगाते हैं। फिर उसको बाद में चलने को सीखना है खुद, फिर उसको स्कूल जाना है, मम्मी का साया छोड़ के 2 घंटा दूर रहना है, हर जगह चेंज, फिर 2 घंटा स्कूल के बाद में 4 घंटा स्कूल में जाना है उसको, बाद में 6 घंटा स्कूल में जाना है, फिर उसको पढ़ना भी है, कम खेलने को मिल रहा है और ज़्यादा पढ़ने को लग रहा है उसको, उसके बाद उसको फिर बड़ी पढ़ाई करनी है, फिर उसको धन कमाना एक और चेंज, अब तक तो पढ़ रहा था आराम से मजा कर रहा था, पिताजी पैसे दे रहे थे, पॉकेट मनी भी भर रहे थे, खाना पीना भी दे रहे थे, फी भी दे रहे थे, अभी वो सब कुछ खुद करना है, वो सब खुद करने के बाद और एक चेंज, अभी बीवी आएगी तो मुझे उसको देखभाल करना है, मुझे पिताजी बनना है, पति बनना है, मुझे अपना घर बनाना है, मुझे अपना ये करना है, मुझे अपनी गाड़ी होनी चाहिए, अपना मोबाइल होना चाहिए, फिर और एक चेंज, उसके बाद में अभी 20-30 साल हो गए, अभी तो ज़्यादा कुछ वैल्यू लाइफ में नहीं है, ना पत्नी उतना सम्मान दे रही है, ना बच्चे सम्मान दे रहे हैं, ना बड़े सम्मान दे रहे हैं, बीच में मिड लाइफ क्राइसिस बोलते हैं उसको, कुछ पूछ ही नहीं रहा है, सब कुछ किया, पहले सम्मान था उसको सम्मान नहीं मिल रहा है, अभी बहुत दुख होता है उस समय, मिड लाइफ क्राइसिस का एक बड़ा चैप्टर है साइकोलॉजी में, 40-45 ईयर्स के अंदर अपने को सबको लगता है कि अभी क्या लाइफ में कुछ दम ही नहीं है, सब कुछ रूटीन हो गया है, शादी भी रूटीन, बच्चे भी रूटीन, परिवार रूटीन, काम रूटीन, सब रूटीन, कुछ 4 महीने बचा नहीं लाइफ में, कुछ 4 महीने बचा है, हर रूम हर मॉर्निंग ऐसे वही मॉर्निंग आते हैं फिर से, कुछ नया नहीं, कुछ नहीं इसके अंदर, फिर वो आगे बढ़ेंगे तो फिर बुढ़ापा आता है, फिर भी उठने को नहीं होता है, बैठने के बाद पैर दुखता है, पीठ भी दुख रही है, अभी डायबिटीज़ भी आ गया, वो एक चेंज, बाप रे मैं डायबिटिक हो गया आज से, अभी मुझे ये नहीं खाना है, मुझे वो नहीं खाना है, ये नहीं खा सकता, वो नहीं खा सकता, बाप रे अभी मैं हाइपरटेंसिव हो गया, अभी मुझे रोज़ एक गोली खानी पड़ेगी, रोज़ चेकअप करना पड़ेगा, 6 महीने में डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा, बाद में बोलेगा अरे दिखता भी नहीं अभी, बोला कैटरैक्ट हो गया, अभी ऑपरेशन करना पड़ेगा, अरे बाल भी सफ़ेद हो गए, बाप रे अब मैं जवान नहीं रहा, अभी मैं बुढ़ा होने लगा हूँ, अब सब मुझे अंकल बोलते हैं, वो एक चेंज है, जब पहली बार आपको अंकल बोलते हैं ना बहुत दुख होता है, अरे मैं अंकल हो गया, एक हंसने की बात है, लेकिन एक आंटी और अंकल बोला तो बाप रे मैं आंटी अंकल का कैसा हो गया, मैं अब तक तो मैं जवान था, फिर जवान रहने की कोशिश करते लेकिन फिर भी जवान नहीं हो सकते, बुढ़ापे तो हो रहे हैं, फिर कोई बोलता ग्रैंडपा है ना, ये भी एक चेंज है एक्सेप्ट करने के लिए, ऐसे सारे चेंजेस होते रहते हैं इतने सारे, हाँ वो तो, लेकिन लेकिन समझो अभी समझो आप एक यंग लड़की हो, हाँ और मैं एक हैंडसम आदमी हूँ और मैं जा रहा हूँ और आप मुझे ओ अंकल करके बुलाएंगे तो मुझे लगा अरे ये यंग लड़की मुझे अंकल क्यों बोल रही है, मैं इतना थोड़ी बुढ़ा हो गया, मैं तो अभी तक फ्रेश हूँ, वो जो फीलिंग है ना वो बहुत आम आदमी को तकलीफ देती है, ठीक इतनी लड़की ने अंकल बोला ना तो ठीक है, लेकिन अगर आप जैसे लड़की ने अंकल बोला तो थोड़ा सा लगता है अरे मुझे अंकल क्यों बोल रही है, भैया बोल सकती है, भाई बोल सकती है, अंकल क्यों बोल रही है, इतना मैं बुजुर्ग हो गया क्या अभी, हाँ मैं क्या माता जी हूँ क्या, माता जी हूँ अभी लड़की हूँ, माता जी क्यों बोल रहे हैं मुझे, तो ये सब मैंने इतना लंबा लिस्ट क्यों बताया, क्योंकि ये हर एक चेंज तो आपके जीवन में आना ही है, फिर भी इसमें मैंने एक जॉब का बारे बताया आपको, लेकिन जॉब भी बदल सकते हैं, कभी आईटी में हो, कभी मैनेजमेंट में हो, कभी किस में हो, कभी किस में हो, कभी फूड वाला फूड केटर वाला आदमी जो है वो हॉस्पिस केयर में आ रहा है, इधर केटरिंग किया हुआ आदमी जो है ना वो हॉस्पिस केयर में कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं, बहुत सारे चेंजेस, कभी कपड़े के कंपनी में था अभी तो भक्ति विधान में नौकरी कर रहा है, कभी कपड़े की दुकान में हिसाब किताब पढ़ता था अभी भक्ति विधान में स्पिरिचुअल केयर कर रहा है, हमारे हॉस्पिटल में एक डिवोटी था राजेंद्र कृष्ण प्रभु स्पिरिचुअल केयर में, हाँ मायापुर से आया था, गोद्रुम द्वीप निवासी है वो, यहाँ पर आके ना मुझे एकदम एक्सपर्ट कैंसर वार्ड का स्पिरिचुअल केयर आदमी बन गया वो, एकदम एक्सपर्ट, उसको छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे यहाँ से, उसको जाना था बिकॉज शादी उसकी नहीं हो रही थी तो उसको गाँव जाना था, तो यहाँ विष्णु अग्रवाल को छोड़ने को तो इतने वो सेटल हो गए थे, लेकिन वहाँ गए तो उनको वहाँ पर मायापुर में क्या फार्मेसी का जॉब दे दिया गया, तो फार्मेसी का ट्रेनिंग दिया गया, किधर स्पिरिचुअल केयर किधर फार्मेसी, लेकिन यहाँ फार्मेसी का ट्रेनिंग इधर ही दिया गया जाने के पहले। वहाँ जाके फार्मेसी चालू किया उसने मायापुर में, पूरा दिन रात फार्मेसी। उसके बाद मायापुर हॉस्पिटल ही बंद हो गया, मतलब हमारा छूट गया। तो अभी उसको क्या करने का, अभी वो तो उसने आसरा ले चुका है हमारा, वो हमारा इस तरह से हृदय से आसरा ले चुका है, मुझे भक्ति विधान में रहना है, आप बंद करो चालू करो, मैं आपका आपका एम्प्लॉय हूँ। तो मुझे बहुत लगा कि ये व्यक्ति हृदय से हमारा आश्रय ले चुका है, तो हमारा ड्यूटी है उसको कहीं ना कहीं सेटल करने का। तो उसको ना फिर यहाँ बुलाया और फिर उसको ऑप्टोमेट्री ट्रेनिंग दिया, नंबर निकालना, ये करना, वो करना, वो चेकअप करना, आँखों का नंबर देखना, वो करके उसको बरसाना भेज दिया आई चेकअप में। अभी दोबारा उसको स्पिरिचुअल के डालने का विचार चल रहा है, क्योंकि उसको ऑलरेडी ट्रेनिंग है। इसलिए अभी एक ही व्यक्ति का एक ही संस्था में कितने जॉब चेंज हो गए एज पर नीड, और वो ऐसा इतना फ्लेक्सिबल है ना, तैयार है वो, आप बोलो क्या करना है, ट्रेनिंग दो मैं आता हूँ। अभी फार्मेसी चलाने को उसको पूरा नॉलेज है, कभी भी बैठ सकता है फार्मेसी में, स्पिरिचुअल केयर भी कर सकता है, और आंखों का ओपीडी में भी असिस्टेंट के रूप में पूरा काम कर रहे हैं। तो इसमें दो चीजें ना, चेंज क्या होता है, बाहर की स्थिति चेंज होती है लेकिन सेवा चेंज नहीं होती है, सेवा तो करनी है, सेवा का टाइप चेंज। आप आज आपको बोलेंगे आप अभी खाना बनाओ, कल आपके बहन बोलेगी आज आप कपड़ा धो लो मैं खाना बनाती हूँ, परसों बोलेंगे आप अभी वो घर ठीक करो मैं खाना बना रही हूँ, वो कपड़ा धो रही है, तुम थोड़ा सा साफ सफाई और ठीक रखो जरा कबर्ड। तो ऐसे अंदर भी चेंज होता है, ऐसा है। जैसे हमारा हॉस्पिटल जब शुरू हुआ था ना तो सब कुछ हो गया, लेकिन फार्मेसी और किचन में कोई नहीं था, तो विश्वरूप दास को बिठा दिया ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी। ये जीरो नॉलेज था ये बिजनेस के अंदर, फार्मेसी इस्टेब्लिश करना शुरू से स्क्रैच से, आपको जगह दिया है, अभी आप दवा ऑर्डर करो, एंटर करो उसको, और एक दिन दवा फार्मेसी खोलना है आपको, 24 दिसंबर 1997 को खोलना है उसको, सितंबर से दे दिया काम। तो बोले किचन की जगह है खाली है, इधर कुछ इक्विपमेंट लाया हुआ है, इधर किचन चालू करना है। 2 साल तक किया उसको, और वही नहीं कर रहे थे, साथ में इधर लोगों को इंटरव्यू भी ले रहे थे, इंटरव्यू हो गया तो कपड़ा टाई निकाल लटकाने का, फिर जाके सब्जी बना के आने का, फिर वो हो गया तो जाके फार्मेसी में कितना ऑर्डर हो गया, कितना लोगों को क्या करना है वो करना। फिर एक दिन वो समाप्त हो गया, फिर बोले अभी आप दवाखाना चालू करो, फिर मेडिकल दवाखाना चालू किया डॉक्टर के रूप में। फिर बोले डॉक्टर के रूप में चालू कर रहे हो तो दोपहर को माधवान प्रभु को स्पिरिचुअल केयर में असिस्ट करो, तो वो करने लगे। और बीच में बाकी सब कुछ जो मतलब ना जो जरूरत है वो सब करना पड़ता था, ऐसा कुछ नहीं कि मेहमान आ गए तो वो गेस्ट रिसेप्शन चालू किया, मेहमान आए तो क्या करना, उनको सेवा तो करना ही है, हमको ही करना है और कौन करेगा वो, तो वो चालू किया। तो इसमें क्या कॉन्स्टेंट रहा बताइए, सेवा कॉन्स्टेंट रही, सेवा का स्वरूप बदलता गया। रूपनाथ प्रभु भी कई साल तक चीफ पुजारी बन के रहे गोपीनाथ मंदिर में, और एक दिन उनको कहा गया कि अभी आप गांव में जाओ प्रीचिंग करने के लिए, तो बहुत दुख हुआ उनको, कश्मकश हुआ, मुझे गोपीनाथ क्यों ठुकरा रहे हैं, गुरु महाराज मुझे क्यों भगवान की सेवा से निकाल रहे हैं। काफ़ी काउंसलिंग करना पड़ा, वो चेंज एक्सेप्ट नहीं कर पाए, लेकिन आज इतने खुश हैं वो, उनको लगा कि उसमें क्या भगवान की इच्छा थी मुझे समझने को टाइम लगा। आज भी डिटी वर्शिप करते हैं, लेकिन उनको आज वो मन में प्रश्न को ये नहीं कि मुझे गोपीनाथ ने क्यों ठुकरा दिया, ऐसा मन में प्रश्न नहीं उनके, चालू है कैसे थोड़ा सा बढ़ा टेम्परेचर कम करो, मतलब एसी ठंडक को बढ़ाओ। तो ये सारे चेंज अपनी लाइफ में होते ही रहेंगे। औरत के लिए क्या होता है, जब उसका होता है ना मेनोपॉज, तो उसको एक बड़ा शौक लगता है कि आज से मैं वो औरत नहीं रही जो पहले थी, एक बड़ा एक एडजस्ट करना पड़ता है उसके लिए, अरे अभी मैं इसके बाहर हो गई या मैं अभी खाना नहीं बना सकती, अभी मेरे को कंट्रोल नहीं रहा, मेरा हाथ पांव कांपता है और वो कॉन्फिडेंस नहीं रहा मुझे, अभी इतना मैं एक्सपर्ट बनाती थी अभी मैं नहीं कर सकती, मैं बुढ़ी हो गई, अभी खड़ी नहीं हो सकती। अभी मेरी मम्मी 90 ईयर्स के ना सब रेसिपी बता देती है, लेकिन मुझे मैं अभी खड़ी नहीं हो सकती फायर के सामने, वो भी एक चेंज है। और एक पति मरता है तो उसको लगता है कि अभी आज से मैं पति के अलग पति से बिना हो जाऊंगी। विधवा ही तो टर्म है, एक नाम है, विधवा हो जाऊंगी, लेकिन उसका मतलब आज से शुरू हो जाएगा, मतलब अभी वो नहीं रहे मेरी जिंदगी में। दिन में 50 बार प्रश्न पूछती हूँ, प्रश्न पूछने के लिए वो नहीं रहे, अब से मुझे ही निर्णय लेना है, ये एक चेंज है। अभी बेटी आज तक घर पे थी, अभी कल से वो पति के घर पे गई, अभी वो मेरे घर पे रोट के नहीं आएगी, तो वो एक चेंज है एक्सेप्ट करने के लिए। हमको सबको टाइम लगा उसके लिए, हर चीज़ के लिए, लेकिन सारे चेंज को स्वीकार करने के बगैर आपके पास कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। आप गए हुए पति को वापस ला सकते नहीं हैं, या शादीशुदा हो गई लड़की को वापस कन्या बना के घर पे ला सकते नहीं हैं, कोई भी चीज़ वापस ला सकते नहीं। अगर आप कल तक कन्या थे आज पत्नी हो गए तो उसको आप वापस रिवाइंड नहीं कर सकते कुछ समय के लिए, जो भी है वो है। और ये सारे बदलती हुए स्थिति में हमको हमारा बेसिक स्पिरिचुअल जो कर्तव्य है और जो बेसिक परिवार के कर्तव्य है वो हमको करने ही है। अभी कृष्ण गोपी को कैसा लगा कि अब तक तो कृष्ण हमारे साथ में थे, दिन रात लीला करते थे, आज से नहीं है। वो लग रहा है आएंगे लेकिन नहीं भी आ रहे हो, कितना बड़ा चेंज है। लेकिन ना उन्होंने अपना जो आज्ञा पालन था ना उनका, वो नहीं छोड़ा। उनकी आज्ञा नहीं थी कि आप मथुरा आके मिलो मुझे, मैं तो इधर ही हूँ, आ सकते हो, नहीं आज्ञा नहीं थी, कभी गए नहीं उधर, खुद नहीं गए कभी। उनका ना सारे विरह में, सारे पेन में उनका एक कॉमन बेस लाइन है, वो क्या है? ओबीडियंस। वो कभी भी उन्हें उसको क्रॉस नहीं किया, कभी भी नहीं किया। 112 साल के बाद पहली बार न्योता आया, कुरुक्षेत्र आ जाओ उनको मिलने के लिए, तो उसको फॉलो किया। उसके पहले मथुरा में भी थे, वो हस्तिनापुर भी बहुत समय थे, द्वारका में भी बहुत समय थे, किधर भी बुलावा नहीं आया, किधर भी नहीं गए। एक बार बुलावा द्वारका में आया था तो सब गोपियां राधा रानी गई थी उनको मिलने के लिए, तभी वो गोपी तलाव फॉर्म हो गया उधर। लेकिन बिना आज्ञा के कभी भी नहीं गए। कितना भी विरह हो गया, कितना भी गुस्सा कृष्ण पे आया, कितना भी उनको बुरा भला बोला उन्होंने विरह भाव में, लेकिन उनका आज्ञा पालन कभी तोड़ा नहीं उन्होंने। तो ये चेंज है ना, वो होते रहते हैं लाइफ में, होते रहते हैं। लेकिन चेंज को हम लोग ना या तो एक डिप्रेसिंग कंडीशन के रूप में देख सकते हैं, कैसे होगा। जैसे मैं सऊदी अरब से यहाँ पर आया था ना, ये सब फार्मेसी और किचन लेने के पहले की बात है, आया मैं और एक महीना छुट्टी लिया, 3 साल के बाद में आया हूँ। जब काम पे आया ना 1 सितंबर को, तो मेरे लिए कोई जॉब ही नहीं था, मतलब नो डिस्क्रिप्शन कि क्या करना है मुझे ऑफिस में आके, नो जॉब डिस्क्रिप्शन। तो नो जॉब डिस्क्रिप्शन के वजह से मुझे डिप्रेशन आया कि मैं जाता हूँ ऑफिस में बैग लेके, बैठता हूँ और आता हूँ, कुछ पता ही नहीं क्या करना है। कुछ दिन गए ऐसे गए, बाद में ना सुबह उठकर ऑफिस में जाने का ही दिल नहीं कर रहा है, जाना ही नहीं मुझे ऑफिस। फिर रोज मुझे डॉक्टर बाढ़ फोन कर रहे हैं, ये तो आया जा रहा है ना ऑफिस में, मुझे मालूम था कि जाने के मूड में नहीं है। रोज मैं फोन करता, चलो ऑफिस में जाओ, चलो ऑफिस में जाओ। फिर कुछ 15-20 दिन के बाद में फिर कुछ बताने लगे मुझे कि कुछ करना है। उसके बाद में अगले महीने में इंटरव्यू लिया मेरा कि क्या चाहते हो आप करना। कोई बाहर की कंपनी थी यहाँ पर मैनेजमेंट वाली, इसी रूम में मेरा इंटरव्यू लिया गया 1-to-1। तो कितने चेंजेस हो गए उसमें, लेकिन फिर भी अपने को अपना बेसिक काम तो करना ही है। अच्छा, तो एक चीज़ है कि वो डिप्रेसिंग सिचुएशन है, बाप रे भी कैसे होगा, इस तरफ से आप सोच सकते हो, या तो आप सोच सकते हो कि मेरे लिए कुछ नया है इसके अंदर है, चलो मैं चैलेंज लेके रहता हूँ और कुछ करके दिखाता हूँ उसके अंदर, या तो डिप्रेशन में बैठ जाओ कुछ मत करो और कहो कि मेरा ट्रांसफ़र जो होगा वो फेल्योर हो गया। ट्रांसफ़र को फेल्योर करना या उसको यशस्वी करना ये केवल आपके हाथ में है, आपके माइंड के हाथ में है। माइंड के बहुत सुनोगे आप तो माइंड आपको फेल ही कर देगा, बोलो नहीं करना है मुझे ये सब। अच्छा, ऐसा मन का और एक स्वभाव होता है कि जब यहाँ से वहाँ आते हो ना तो वहाँ के चांद अच्छे लगते आपको कि पहले कितना अच्छा था, और वहाँ से यहाँ आ गए तो उधर का अच्छा लगता है। जॉब चेंज किया तो लगता है कि अरे उधर कितना अच्छा था, कितनी फैसिलिटी थी इन माय प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन, इन माय प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन, ऐसे बात करते रहते हैं। और वहाँ से आ गए तो फिर उधर से उधर गए, फिर यहाँ का अच्छा 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 लगने लगता है। तो क्यों ना जब जब वहाँ पर है तब हम वहाँ का अच्छा क्यों नहीं देख सकते हैं? क्योंकि मनुष्य का स्वभाव क्या है, अच्छा चीज़ ज़्यादा परसीव नहीं करता है वो। समझो आपको आज खाने में पांच चीज़ मिली तो आप बोलेंगे नहीं, अरे पांच चीज़ खाया मैंने आज, दाल चावल सब्जी रोटी और स्वीट भी खाया मैंने आज, और सलाड भी था ऊपर से, अचार भी था, पापड़ भी था, ऐसा कोई बोलेगा नहीं। लेकिन आप स्वीट मत दो, बोलेंगे क्या खाना खिलाया, स्वीट ही नहीं खिलाया है कि नहीं, इतना खिचड़ी खिलाया हमको, आप खिचड़ी का कुछ आइटम नहीं था, खिचड़ी का पापड़ भी नहीं दिया, ऐसे बोलेंगे आप। वो ऐसा नहीं बोलेंगे खिचड़ी दिया बहुत टेस्टी था, ऐसा नहीं बोलेंगे। क्या नेगेटिव है ना, उधर माइंड पर जाके पहले पकड़ता है। इसलिए हम लोग जहां पर हो ना, हमारा स्वभाव ही है कि जहां पर है वहां का नेगेटिव हम लोग हमेशा सोचते रहते हैं। लेकिन यशस्वी आदमी वो होता है कि जब जो जब वो जिस जगह पर है उस जगह पर वो पॉजिटिव के बारे में सोचते रहता है कि मैं यहां पर हूं, क्या लाभ है मुझे आज, जो कभी आपको समझ में नहीं आता। फॉर एग्जाम्पल रिलायंस में अगर आप आज होते तो आपको 12 या 15 घंटे में भी आपको छोड़ते नहीं घर जाने के लिए, लेकिन हमको वो पता ही नहीं, हमने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया है, तो हमको पता ही नहीं, तो हम लोग कैसे बोलेंगे कि अरे कितने सुखी हम लोग यहाँ पर। वो जब तक बाहर की बुराई आपको पता ही नहीं तो यहाँ का सुख कैसे पता चलेगा। लेकिन जो व्यक्ति बाहर काम करके आ चुका है इधर, उसको पता रहता है यहाँ पर क्या सुविधा है। इसलिए राधा गोपीनाथ मंदिर में भी ब्रह्मचारियों को ब्रह्मचारी बनाने के पहले 5 साल तक एक जगह नौकरी करनी पड़ती है, 5,000 रुपये की नहीं, अच्छे पगार की नौकरी। उसका भी रूल है कितना पगार की नौकरी होनी चाहिए और कितना साल करना है, क्योंकि बाहर की जब गालियां और लात खाएंगे ना, उसके बाद छोड़कर आएंगे तो ग्रेटफुल रहेंगे मंदिर में कि मंदिर में कितने अच्छे लोग हैं। वैसे भी हमारा ये अनुभव है कि भक्ति विधान में भी अच्छे कर्मचारी वो है जो बाहर कुछ साल काम करके यहाँ काम करने के लिए आए, तो उनका पता चलता है कि कैसे गालियां मिलती है बाहर, अच्छे अच्छे अधिकारी भी कैसे गंदी गंदी गाली बोलते हैं टारगेट्स के लिए, कैसे अच्छे अच्छे कर्मचारी अच्छे अच्छे पोजीशन के ऑफिसर भी कर्मचारियों के बीवी बच्चों के लिए परवाह नहीं करते हैं कि मेरी बीवी बीमार है, 104 बुखार से एडमिट है, वी डोंट केयर, आपको आना है। अब बोले मेरा बच्चा गुजर गया है, थोड़े 2 दिन छुट्टी लो, 3रे दिन पे आ जाओ, बीवी रो रही है, कुछ नहीं, टारगेट पूरा करना है। ये स्थिति जब अनुभव करते ना तो लगता है हम लोग उस वर्ग में आ गए। जैसे अपना वो है ना महेंद्र गढ़वी कौड़ी, जब इंटरव्यू दिया था ना तो कह रहे थे बाप रे कितना अच्छा संस्था है आपका, सभी वो एयरपोर्ट में पहले थे सिक्योरिटी ऑफिसर के रूप में। तो मैंने ज्वाइन करने के बाद पूछा वो जी कैसा लगता है, तो मैं स्वर्ग में आ गया, पूरे स्वर्ग में आ गया। क्योंकि तो बाहर का जो मैल था ना उसका एक्सपीरियंस क्या था उसने, मैंने इसको कम से कम 20 दिन के बाद पूछा होगा, क्योंकि उसका इंटरव्यू मैंने लिया था, बहुत आतुर था वो ज्वाइन करने के लिए, बाद में पूछा था रियली स्वर्ग में आ गया मैं, इधर ये तो स्वर्ग है इतना। लेकिन आप अगर स्वर्ग में जन्म लोगे तो आपको कोई बड़ा अच्छा लग, ज़्यादा अच्छा लगेगा नहीं, क्योंकि घर में ही जन्म लिया, इसमें क्या, जेल से स्वर्ग में आए तो पूरा गया वाह क्या बात है यार, जो रोज़ सुखा रुखा किसी का खाया हुआ बचा हुआ खाना खाता है, कुछ शादी में लगे गए आप खाना खाने के लिए पूरा फिश बोला आपसे ये प्लेट तुम्हारा जितना चाहे उतना खा लो, और जो रोज ही पार्टियों में खाना खाता है, कभी ये पार्टी कभी वो पार्टी कभी शादी कभी एंगेजमेंट कभी कॉन्फ्रेंस कभी कुछ, रोज ही खाता है 5-star होटल में, वो क्या बोलेगा एक बार घर का दाल चावल मिलेगा तो अच्छा रहेगा, गरम गरम घी और नींबू डाल के सादा एकदम सिंपल, कुछ भी नहीं चाहिए उसके अंदर, पनीर तो देखना ही नहीं मुझे, ऐसे बोलता है ना कभी कभी। और बाकी लोग पनीर के लिए तरसते हैं, पनीर चाहिए पनीर चाहिए, डिफरेंस क्या है उसके अंदर। जब तक हमारा भाग्य हम लोग आज की स्थिति में नहीं पहचानते आज का भाग्य, तब तक आप सुखी नहीं हो सकते, दुखी निश्चित होना है आपको। और आदमी को ज्ञान होना चाहिए कि हर चीज बदलने वाली है, आज मैं जो नौकरी कर रहा हूं अभी हवा मेरे मन में चल रही है कि अभी 3 साल में रिटायर होना है, उसके बाद जिंदगी अलग रहेगी, हर महीने में अकाउंट में पगार नहीं आएगा खर्चे करने के लिए, जो भी है वही रहेगा उसमें ही चलाना होगा, फिर ये कम करना होगा फिर वो कम करना होगा, यात्रा में 3-4 बार जाते थे परिवार सकट अभी एक ही बार जाएंगे, या दो साल में एक बार जाएंगे, या लोगों को इतना धड़ाधड़ गिफ्ट देते थे हम लोग खरीद के, अभी वो कम करना पड़ेगा, उतना सब लोगों को गिफ्ट कॉस्टली नहीं दे पाएंगे, अभी कम करना होगा। जब घर में हमारे प्रोग्राम होंगे तो अभी फिर इतना बड़ा फिस्ट नहीं बनाना होगा, थोड़ा सा कम करना होगा, क्योंकि चलाना ना आगे लंबा सा, कितना साल जिएंगे पता नहीं, उतना सब बीमारियाँ कितनी होगी। तो एक बड़ा चेंज है ना, वो रिटायर्ड लाइफ इज अ बिग चेंज। और लोग पता है क्या करते हैं, हमारे पास तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारे पास बहुत सेवाएं हैं, हम लोग बिजी हो जाएंगे, लेकिन बहुत लोगों के पास ना रिटायर हो गया, आज पार्टी हो गया, रिटायर का बाय बाय सेंड ऑफ भी हो गया, कल के दिन में सुबह से करना क्या है, 10 बजे के बाद कुछ भी नहीं है सामने, क्योंकि और कुछ किया ही नहीं है, सुबह उठ के तैयार होके भागने के अलावा और लाइफ में कुछ भी नहीं किया है, तो अभी वो बंद हो गया तो उसके बाद में क्या करना है मुझे। लोग फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, क्या करूँ क्या करूँ। मेरे पास आके बैठते हैं, रोजी दिमाग खराब हो गया घर में बैठ के, क्या करना है बताइए, रिटायर होके मैं परेशान हो गया हूँ, कुछ ना कुछ कराओ मेरे से आप। मैं कितना लोगों को हैंडल करता हूँ यहाँ पर। इसीलिए हर चेंज के लिए हमको तैयार रहना चाहिए, और चेंज कभी कभी बता के आएगा आपको प्लान रूप में, कभी कभी शॉक के रूप में आएगा, और दोनों चेंज को आपको एक्सेप्ट करना ही है, आपको चॉइस नहीं है, डिनाई करके आपको चॉइस नहीं है कि नहीं मानूंगी मैं कि मेरे पति चले गए, अभी कहीं होंगे वो, आएंगे कुछ दिन के बाद मुझे मिलने के लिए, ऐसे बहुत लोग बोलते रहते, मैं बिलीव नहीं करता कि वो गए करके, वो आएंगे, है ये मेरे पास ही है, वो टाइम लगता है उसको एक्सेप्ट करने। तो इतना ही मैं कह सकता हूँ, जो है आज उसमें से क्या अच्छा निकाल सकते हैं और क्या अच्छा देख सकते हैं, उसमें कैसे मन लगा सकते हैं, उसी पे लगना है। अगर आपको हमेशा उल्लास में रहना है तो आपको अभी एजिंग बॉडी है, बाल सफ़ेद हो रहे हैं, शरीर बीमार हो रहा है, क्या कर सकते हैं आप उसको। जिस दिन डायबिटीज़ डायग्नोज हो गया था मेरा कि आज से मुझे गोली चालू करनी पड़ेगी डायबिटीज़ की, मैं इतना डिप्रेशन में था कितने दिन तक, और जब भी मैं टेस्ट करता था ना वो दिन मेरा बहुत एंग्जाइटी में जाता था कि अभी लीला मंजरी क्या बताएगी, कौन सा नंबर बताएगी, आज शाम को रिपोर्ट आएगा। उस समय कैसा था ना, सुबह ब्लड दो, शाम को 7 बजे तक वेट करना पड़ता था शुगर रिपोर्ट के लिए भी। तो सुबह ब्लड दिया है, शाम तक एंग्जाइटी, पता नहीं कौन सा नंबर बताएगी आज, वो ऐसा दुख होता था। और जब ज़्यादा नंबर बताती थी, अभी डॉक्टर क्या बताएगा, दुगनी करेगा गोली कि कम करेगा ज़्यादा करेगा क्या मालूम, ऐसा सब होता था। अभी वही चल रहा है, ऐसा कुछ नया कुछ थोड़ी नहीं है, सेम स्टोरी है, लेकिन रूटीन हो गया अभी वो एकदम रूटीन हो गया। तो हर चीज़ जो बहुत भयंकर होती ना वो एकदम रूटीन हो जाती है। हाँ ठीक है, अभी पति जाके 30 साल हो गए, अभी क्या मैं जी रही हूँ, अपना जीवन चला रही हूँ, बच्चों को बड़े भी हो गए, सबको अपने रास्ते पर लगा दिया मैंने, है ना, सब रूटीन हो गया अभी। साइकोलॉजिकल डिप्लोमा के अंदर एक पूरा किताब है, साइंस ऑफ एडजस्टमेंट, है कि नहीं, आपने सब लोग डिप्लोमा किया ना, एक पूरा किताब है उसके अंदर, साइंस ऑफ एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट विथ व्हाट, विथ चेंज, साइंस ऑफ, आप किताब पढ़ो, वो बहुत सुंदर किताब है। कितने चेंज है जिंदगी में हमारे, हर कदम पर चेंज है, वो सारे चेंज का उसमें वर्णन किया है, कैसे उसको हैंडल करना है। और हमारा सबसे बड़ा शस्त्र क्या है उसको हैंडल करने के लिए, हम लोग जप करते हैं भगवान के नाम का, उससे बहुत आंतरिक शक्ति उत्पन्न होती है इस चेंज को, इस बदलाव को स्वीकार करने के लिए। जप करने से बहुत ही अंदर की शक्ति उत्पन्न होती है जो किसी भी दुर्घटना को वो स्वीकार करता है। थोड़ा थोड़ा हड़बड़ा जाएगा थोड़ा सा, लेकिन बाद में तुरंत खड़ा हो जाएगा, बैठे नहीं रहेगा, गिर गए तो तुरंत खड़ा हो जाएगा और आगे का कोशिश करेगा क्या करना है। हमारा पता है ये चीज़ सब जो कन्फ्यूजन आप बता रहे ना, क्यों ये कन्फ्यूजन हो रहा है, क्या करूँ समझ में नहीं आ रहा है, अभी ये करूँ कि वो करूँ, क्योंकि हमारा ना साधना कमज़ोर है, इसलिए हम लोग हड़बड़ाते हैं। आप एक बात दिल में तय करो कि कुछ भी हो जाए तो सुबह 8-9 के पहले सोलह माला मुझे पूरी करनी है, कुछ भी हो जाए। तो देखो आप ना कैसे चेंज को हैंडल कर सकते हो बहुत अच्छी तरह से। बॉम्ब ब्लास्ट हो गया ना, बॉम्ब ब्लास्ट, तो वो लोग ना रेलवे स्टेशन को सामना नहीं कर सकते, रेलवे स्टेशन को जाना ही उनके लिए बहुत बड़ा भाड़ जैसा तकलीफ था। तो हमने कितने सेशंस किए यहाँ पर फिफ्थ फ्लोर पे, उनको ऐसा तैयार करने के लिए आपको जाना है प्लेटफॉर्म पे जाके खड़े रहके वापस लौट के आना है, लेकिन जाना है उधर। हाँ क्या हुआ था
उसी ट्रेन में थे ना,
हाँ
और जैसे ट्रेन थोड़ा सा आगे गया फर्स्ट क्लास में थे, ब्लास्ट हो गया
ना। जा नहीं मतलब कई महीने तक वो जा ही नहीं पाया, स्टेशन स्टेशन नाम की चीज देखा नहीं उन्होंने, क्योंकि वो उनको स्वीकार करने के लिए मुश्किल था कि मैं वापस भी वहाँ जाना पड़ेगा। लेकिन धीरे धीरे करके ट्रेनिंग दिया उनको, तैयार किया उसके लिए, उनका डर था वो निकाल के उनको वापस चालू कर दिया, ऐसा है वो। लेकिन ये सब करने में ना चेंज को स्वीकारने में, चेंज को जिंदगी में उतारने के लिए, रूटीन बनाने के लिए साधना बहुत स्ट्रांग बहुत जरूरी है, और वो बाकी के लोग करते नहीं हैं, वो ना टूट ही जाते हैं प्रभु जी। जैसे फ्रैक्चर होता ना, या तो वो रॉन्ग हील होके टेढ़ा हो जाता है, रॉन्ग हील हो गया, या तो आपने सही कर दिया तो सही लाइन में वो हील हो गया। तो जब करने वालों का मन जो कष्ट पाता है ना, वो सही जगह से हीलिंग होता है उसका। बाहर के लोगों का कुछ ये सपोर्ट नहीं है तो वो टेढ़ा मेढ़ा स्कार पैदा करके हीलिंग होता है उनका, बहुत ज़्यादा स्कार पैदा होते हैं डेफिशियंसीज, और वो स्कार उनको बार बार उसकी याद दिलाते हैं ऐसा हुआ था ऐसा हुआ था ऐसा हुआ था। देखेगा ना इधर जख्म है उसमें सूख गया वो तो, हाँ इधर मैंने चाकू से कटा था, याद दिलाएगा बार बार वो दर्द की। तो जपा जब मैकेनिकल होता है तो उसके लिए क्या करना है, इसके लिए 500 बार काउंसलिंग मीटिंग में डिस्कशन कर चुके हैं ना हम लोग, वो उपाय क्यों नहीं अपनाते आप? आपको पता चला है कि जपा मैकेनिकल हो रहा है तो किताब खोल के पढ़ेंगे तो मालूम पड़ेगा आपको भक्तों के बीच में जप करना है, सुबह उठ के जप करना है, फिक्स जगह पे करना है, मंदिर में जाके करना है, इतने सारे उपाय हमारे पास है ना, उसमें से कोई ना कोई उपाय तो आपने आपको फॉलो करने लायक होता है कि नहीं होता है? आप बोलेंगे हाँ मंदिर में जाना मलाड से मुमकिन नहीं मुझे, लेकिन उसमें से कुछ चार पांच में से उपाय में से एक तो उपाय मुमकिन है ना आपको, जब आपको पता है कि क्या करना होता है। हम लोग क्या करते हैं उसी को वहीं बैठ के, बच्चा कैसे ना गिरता है वहीं बैठ कर रोता है, वैसे हम लोग करते हैं, या तो बच्चा वहीं बैठ कर रोए या तो गिरा हो तुरंत ऊपर उठ के भागने लगेगा वो, या कोशिश करके किसका हाथ पकड़ के उठेगा और चलना सीखेगा। हम लोग उस बच्चे की तरह है, वो गिरते हैं और वहीं बैठ के रोते रहते हैं ताकि हमको कोई मम्मी आके उठा ले, रेडीमेड मतलब बिना एफर्ट के उठा के गोद में रखे। तो स्पिरिचुअल लाइफ में जो भी डिफिकल्टी आती है ना वो अननोन नहीं है, मतलब जी जब में ध्यान नहीं लगना अननोन डिफिकल्टी है, पता ही नहीं था आपको कि ऐसा भी होता है बिना ध्यान के भी जब होता है, ऐसा है क्या? सबको मालूम है सुबह उठने को नहीं हो रहा है, सबको मालूम है ऐसे होता ही है, सबको मालूम है शुरुआत का दो माला अच्छी होती है, लास्ट में सब मन वहाँ यहाँ भटकता है, बेल बजती है, बेल वाला आता है दूध वाला आता है, सबको मालूम है। तो रोज जो मालूम आने वाली तकलीफ है उसको भी सुलझाने में हम लोग डिफिकल्टी क्यों है आपको? वो तो कुछ अननोन प्रॉब्लम नहीं है, अचानक बच्चा बेटा मर गया तो भाई ठीक है, अरे उम्मीद ही नहीं किया था ऐसा कैसे हो गया, तो सोचा भी नहीं था, तो ठीक है टाइम लगेगा। लेकिन जो पता है आपको रोज ज़्यादा गुलाब जामुन खाएंगे तो शुगर बढ़ेगी, मालूम है आपको रात को खाएंगे तो पेट गड़बड़ होगा सुबह उठ नहीं पाएंगे, मालूम है हमको सब पता है ना, एक लिस्ट है पूरा, आपको बोलेंगे लेक्चर दो तो आप भी दे सकते हैं क्या करना चाहिए अगर जब ठीक से नहीं हो रहे तो, आप खुद बता सकते हैं। लेकिन डिफिकल्टी ये है कि आप खुद भी बता सकते हैं लेकिन खुद फॉलो नहीं करते हैं, इसलिए सब मैकेनिकल हो जाता है। तभी मैकेनिकल चीज़ को अगर चार्मिंग करना है तो क्या करना है, सारे जो उपाय दिए ना बताए गए उसको चुन के फॉलो करना है। और मुझे हमेशा लगता है कृष्णा कॉन्शियसनेस में आपको, कृष्णा कॉन्शियसनेस कोई भी चीज़ करने को बोर हो गया ना तो तीन चीज़ में आपको ध्यान देना है, एक भगवान का नाम, दूसरा भगवान की कथा और तीसरा भगवान की वर्शिप, डीटी वर्शिप। इस तीन चीज़ों में आप दिल लगा दो तुरंत आप लाइन पे आ जाओगे वापस। और एक चीज़ है प्रसाद, आप लोग रोज प्रसाद खाते हो बट कभी दिल में ऐसे बोलते हो कितने भगवान दयालु हैं ये सब्जी उन्होंने चखी हुई है जो मैं खा रही हूँ, ऐसा लगता है आप? यही शाक का कृष्णा स्वादिलो, ऐसा लगता है आपको? रोज खाते हैं आप प्रसाद, लेकिन कभी लगता है ऐसे आपको? तो प्रसाद रोज खा रहे हैं, लेकिन आज आप दिल से खाओगे ना तो आपको एक अलग अनुभूति आएगी, आपको एक चार्म आएगा, डिप्रेशन में भी अच्छा लगेगा। अरे चीजें वही हैं, वही नाम भगवान का है, वही प्रसाद है, वही भगवान की मूर्ति घर पे आपके है, लेकिन उसी में आपने दोबारा एक बार दिल लगाया ना, आप तुरंत उत्साह में भर जाएंगे, चार्म आएगा आपको। मैं हमेशा बताता हूँ एक बात को कि सचिन तेंदुलकर के पास में अगर कोई बैट्समैन गया और बोलता है कि स्कोर ही नहीं होते आजकल, हर बार जीरो में आउट होता हूँ, हर बार पांच में आउट होता हूँ, कभी रन आउट होता हूँ, कभी कुछ शॉट गलत मारता हूँ, कैच देता हूँ, तो मुझे अभी भी याद है कि वो उसका एक स्टाइल था, वो पहले तुमको क्रीज में खड़ा कैसे रहना है बैट लेके वहाँ चालू करेगा वो। भंगारे भाई तो बड़ा टेस्ट क्रिकेटर हूँ, मुझे क्या आप उसे खड़ा रहने को सिखा रहे हो? बोले शुरुआत वहीं से होती है और प्रॉब्लम भी वहीं होता है। हम लोग कहले वो चैतन्य चरता में क्या लिखा है मुझे समझ में नहीं आ रहा है प्रभुजी। अरे तुमने भगवत गीता पढ़ी क्या पहले? सूर्य को जप करते हो क्या पहले? वो सीसी में ऐसे पुंडरिक विद्यालय ने ऐसे क्यों बताया उसको, उसके बारे में समझ में नहीं आ रहा है मुझे। लेकिन जब एबीसीडी ठीक नहीं तो फिर आगे समझ में कैसे आएगा? तो वो पहले खड़ा रहने को सिखाएगा, वहां से चालू करेगा एबीसीडी। तो वैसे ही हमारे स्पिरिचुअल लाइफ के हर एक प्रॉब्लम का उपाय एक ही है, चैंटिंग ठीक से हो रहा है क्या, श्रवण ठीक से हो रहा है, चार नियम ठीक से फॉलो कर रहे हो, सत्संग ठीक से कर रहे हो क्या, और सेवा में दिल लगा के सेवा कर रहे हो, ये पहले पूछना है आपको, उसके बाद में पूछो क्या करना है क्या नहीं करना है। कुछ भी समस्या आपको आगे ना, डिप्रेशन आ रहा है, बोर हो रहा है, लाइफ में चार भी नहीं हो रहा है, कुछ भी सब कुछ सब गलत हो रहा है ऐसा लगेगा आपको, सबसे पहले एबीसीडी को टटोलो, आपको उधर ही प्रॉब्लम मिलेगा, उसको सॉल्व करो, तुरंत आपका गिरा हुआ मन ऊपर उठेगा। हाँ, तो कितना भी आप लोग कष्ट में आओगे ना, ए बी सी डी को हमेशा ध्यान दो, और जब तकलीफ आती है ए बी सी डी को पहले टटोलो, आपको उत्तर मिल जाएगा उसके अंदर। दुनिया में ऐसी कोई भी कष्टमय, दुविधामय या तकलीफ वाली स्थिति नहीं है जो ए बी सी डी ठीक करने से ठीक नहीं होती, ये हमारा विश्वास होना चाहिए। एनएची औषधि मांगी नाशो बर लगी, ये हरिनाम जैसा दवा और कोई नहीं है, ये सबसे सर्वोच्च औषधि है, सर्व औषधि है, ये उस पर विश्वास होना चाहिए। हमको लगता है कि नहीं नहीं ठीक है, अभी तो मुझे जब मैं करता हूँ, लेकिन मुझे अभी ये प्रॉब्लम के लिए इधर भी करना पड़ेगा, करो आप उसको, लेकिन श्रद्धा होनी चाहिए कि सॉल्व तो भगवान की कृपा से ही होगा और भगवान नाम के जब से ही होगा, ये अंदर का विश्वास होगा ना, फिर भगवान भी आपको मजबूर हो जाएंगे बताने के लिए, हाँ ये इतनी श्रद्धा से मेरे नाम को पुकार रहा है तो मेरे नाम के माध्यम से उसको उपाय देना ही पड़ेगा मुझे, क्योंकि इतनी श्रद्धा मेरे नाम पे दिखा रहा है वो, मैं भी मजबूर हूँ उसको नाम के माध्यम से यश दिलाना मेरा फर्ज हो गया फिर अभी, लेकिन इसको श्रद्धा ही नहीं तो फिर क्या करने दो अपनी मेहनत, मैं क्यों नाम का चमत्कार दिखाऊँ उसको, इसको श्रद्धा है उसको चमत्कार दिखाऊंगा, ऐसा है वो। इसका मतलब ये नहीं कि आप अभी दवाई नहीं लेंगे, डायबिटीज गोली नहीं खाएंगे, हरे कृष्ण जब करेंगे और डायबिटीज ठीक होना चाहिए, ऐसा नहीं है, लेकिन जो जरूरी है वो करेंगे, लेकिन अंदर की श्रद्धा है कि फाइनली मेरा जो श्रद्धा जो है भगवान के नाम पर है, वही मुझे ठीक करेगा सब कुछ इस पर, और जरूरी है वो करेगा मेरे लिए, और डायबिटीज रखना है तो रखेगा, ठीक करना है तो ठीक करेगा, लेकिन चमत्कार की अपेक्षा नहीं करता मैं कि भगवान का नाम लिया और तुरंत डायबिटीज ठीक हो गया, चमत्कार बहुत कम होते हैं एक्चुअली, रोज चमत्कार नहीं होते, बहुत रेयरली होते हैं, इसलिए चमत्कार कहते हैं उसको। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।